मेरे युवा मित्रों नमस्कार। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों के सामने मैं एक बहुत ही छोटा सा विनम्र प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि 2-3 दिन पहले के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने यूपीएससी का क्या चरित्र है, यानी कि उसकी पहचान क्या है, और आप सब जो सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं आपकी पहचान क्या है, इसके बारे में बातें की थी। क्योंकि जब हम दोनों की पहचान को समझ लेते हैं तो तैयारी करने का हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाई देने लगता है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आप लोगों की मिली। बाद में मुझे लग रहा था कि हो सकता है किसे स्टूडेंट आउटराइट रिजेक्ट कर दें कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये परीक्षा में भी नहीं पूछा जाएगा, सर क्या ये फालतू की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब आप लोगों ने अपनी ओर से इसकी उपयोगिता के बारे में बताया, और इनफैक्ट आप सबके इस तरह के मेल पढ़ने के बाद फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और वही मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइडिया ये आया कि क्यों ना हम लोग बुधवार को, सोमवार और मंगलवार को करंट अफेयर्स और उस तरह की बातें होती ही हैं, फिर उधर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी करंट अफेयर्स की ही बातें होंगी, बीच का दिन जो बुधवार का दिन पड़ता है उस दिन को हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के इसी तरह के विषयों के बारे में सुरक्षित रखें, यानी कि इस दिन यानी कि बुधवार को इसी तरह के विषयों को लेकर के जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में अलग तरीके से आपकी सहायता कर सकेंगे, आपका मार्गदर्शन कर सकेंगे, उन विषयों को लिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि इस दिन का जो करंट अफेयर्स होगा उसे नेक्स्ट डे हम बाकायदे कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स को हम उस तरीके से नहीं छोड़ सकते, लेकिन बुधवार के दिन को पूरी तरह से इस तरह के विषयों को समर्पित करने का मेरा प्रस्ताव है। आप लोगों को मेरा ये प्रस्ताव अगर स्वीकार्य हो तो प्लीज आप सब ईमेल के जरिए मुझे बताएं, ताकि आने वाले सप्ताह से ही हम लोग इसकी शुरुआत कर सकें। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के तहत हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं उसके दो विकल्पों तक पहुंच सके। उत्तर बताने से कोई फायदा नहीं, अगर मैं उत्तर बता भी दूंगा तो क्या होगा। अभी जो हमारा कंसर्न है, जो मूल प्रश्न है, वो केवल ये है कि हम किस प्रकार से दो विकल्पों को किनारे करके अपने जो भ्रम की स्थिति है उसे दो विकल्पों तक लेकर आ जाए। कल मैंने आपको एक प्रश्न के उदाहरण के जरिए इसे समझाने की कोशिश की थी, और मुझे विश्वास है कि उसके ऊपर आप लोगों ने मेहनत की होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, और ये बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे पास डी सीरीज का सेट है, उसका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, मैं जानबूझ करके बीच बीच के किसी प्रश्न को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बीच के प्रश्न को ले लूं तो आप सोचेंगे कि अरे सर तो अपनी जरूरत अपनी सुविधा के हिसाब से छांट रहे हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, इसलिए मैं जानबूझ करके शुरुआत से चल रहा हूं। जो दूसरा प्रश्न है, देखिए बड़ा विचित्र किस्म का प्रश्न है, ये रोचक किस्म का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा कठिन भी है और बहुत सरल भी है। कुछ सालों से एक बात देखी जा रही है और आपने महसूस भी किया होगा अगर आप इससे पहले एग्जाम में बैठे होंगे, तो पर्यावरण, वन, इन सब पर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। मैं शायद इससे पहले कभी बता चुका हूं कि चूंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी जो प्री एग्जामिनेशन है अब इसी के माध्यम से होने लगा है, तो शायद इसीलिए यूपीएससी ऐसा कर रही होगी। डेफिनेटली इस तरह के प्रश्न जो स्टूडेंट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही आसान होगा, लेकिन दूसरों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत आसान भी हो सकता है, और इनफैक्ट इसी से ही सेम प्लेइंग फील्ड का निर्माण भी होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे जो स्थितियां हैं खासकर मैं वो आपके सामने रखूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है, अभी भी आप प्रश्न खोल लें लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़कर सुनाऊंगा। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय हाथियों के संदर्भ में, हाथियों के बारे में है और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहला, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, यानी कि जो मां है वो ग्रुप लीडर होती है। दूसरा, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, अधिकतम गर्भावधि यानी कि जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वह 22 माह तक हो सकती है। 22 माह को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए तो लगभग लगभग समझ लीजिए कि उतने सप्ताह तक भी आप कह सकते हैं। और याद रखिए यहां दिया हुआ अधिकतम मैक्सिमम, ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। देखिए अगर आप बहुत इत्मीनान से पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में और खासकर प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के साथ भी यही होगा। आप अधिकतम शब्द को जब मिस कर जाएंगे तो हो सकता है कि फिर गड़बड़ भी हो जाए, उत्तर खोजने में आपको दिक्कत होगी। तीसरा है सामान्यतया हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और जो चौथा है स्टेटमेंट वह भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है, यानी कि केरल में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में देखिए क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो यही प्रश्न आ सकता है कि यार हाथियों के बारे में पूछ रहे हैं तो हम कितने जानवरों के बारे में पढ़ें। हमारे यहां बहुत से टाइगर स्टेट है, हमारे यहां टाइगर खूब पाए जाते हैं, तो क्या हम टाइगर के बारे में भी पढ़ें? तो क्या हम फलाने के बारे में भी पढ़े, लोमड़ी के बारे में भी पढ़े, हिरण के बारे में भी पढ़े, सांप के बारे में? आपका दिमाग इस तरह से जा सकता है। ये अनरीजनेबल थिंकिंग है, अतार्किक सोच है ना, अतार्किक सोच जिसके पीछे कोई कोई धारणा नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस सोचने लगे। हाथी शब्द मिल गया तो शेर भी पढ़े और वो भी पढ़े, वो भी पढ़े, ऐसा कोई पढ़ता है क्या, ऐसा कोई होता है क्या, आप सोचने लगेंगे। लेकिन यदि मैं आपको एक क्लू दूं तो शायद आप इस प्रश्न के पीछे की धारणा को समझ लेंगे। अगर आप एक सतर्क सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान होगा कि पिछले साल 2020 में मई के लास्ट में एक घटना घटी थी केरल में, तिरुवनंतपुरम में। और वो घटना ये घटी थी कि एक हथिनी थी जो प्रेग्नेंट थी, याद रखिए यहां पर प्रेग्नेंट शब्द पर जाइएगा, उसकी एज थी 15 इयर्स, 15 इयर्स में वो प्रेग्नेंट थी। एक व्यक्ति ने उसके मुंह में एक, जिसको अनार हम लोग कहते हैं ना पटाखों में जो जलाया जाता है, वो जला करके रख दिया और फिर वो जो हथनी है पटाखा फूटा और वो हथनी मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब शायद आपको घटना ध्यान आ गई होगी और इस घटना को लेकर के पूरे देश में बहुत प्रतिक्रिया हुई थी, बहुत आर्टिकल्स लिखे गए थे, सोशल मीडिया में भी बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई थी। ध्यान आया आपको? ध्यान शायद आया हो, राइट? ये सारी चीजें हुई तो इस क्वेश्चन के पीछे जो धारणा है या कह लीजिए जो क्लू है, याद रखिए वो करंट अफेयर्स का है। आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में तो ऐसा हमने कभी कुछ पूछा नहीं, सरकार ने तो कोई नीति नहीं बनाई, लेकिन ये घटना करंट अफेयर्स की है। अब आप देखिए कि जो मैंने कहा कि यूपीएससी इस बात को कंसीडर करती है कि जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसकी एज बहुत ज्यादा कोई अधिक नहीं है और वो कोई बहुत विशेषज्ञ भी नहीं है। आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप हाथियों के विशेषज्ञ हैं। अब आप इसमें से अब निकालेंगे कैसे, है ना, आप इसको हल करेंगे कैसे? और आपका दिमाग फटाफट चलना भी चाहिए, तेज होना चाहिए, अभ्यास हमारे दिमाग को तेज ही करता और कुछ नहीं। अब आपको मैं क्लू देता हूं, चलिए अपनी तरफ से क्लू दे रहा हूं। चौथे पर आइए कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। मैंने क्या बताया कि जो घटना घटी थी ये केरल राज्य की है, केरल राज्य में ये घटना घटी थी। हो सकता है कि आपने जो न्यूज आइटम पढ़ा हो उसमें ये मेंशन न किया हुआ हो कि केरल में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, आई डोंट नो, क्योंकि अलग अलग अखबार अलग अलग तरीके से लिखते हैं। आप पता नहीं कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं। और अब हम हर घटना को अगर इस तरीके से पढ़ने लगेंगे तो हमारा दिमाग तो बिल्कुल फेल हो जाएगा, कितनी घटनाएं हम अपने दिमाग में रखेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि कम से कम उसे इतना तो मालूम हो कि भाई हाथी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, क्योंकि हाथी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है और उससे रिलेटेड एक घटना घट गई है और उस घटना के तहत एक हाथी की मृत्यु हुई है। तो स्वाभाविक है कि पक्का है कि अखबारों ने, मुझे ध्यान नहीं है देखिए, कि जरूर लिखा होगा कि कहां सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। तो अगर आप इसे करेक्ट कर लेते हैं या इसे पकड़ लेते हैं, कहना चाहिए कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, केवल एक स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप देखें कि आप कितनों को बेहतर कर सकते हैं। इनफैक्ट सच पूछिए तो अब चलिए हम सही ही उत्तर ढूंढ लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही क्या है आप भूल जाइए, मैं बता सकता हूं लेकिन आप भूल जाइए, मैं आपके दिमाग को ज्यादा उलझाना नहीं चाहता, है ना। फालतू की चीजों में आप पढ़िएगा तो आपको पता भी लग जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब है कि जो भी चार वाले विकल्प हैं उन्हें हमें खारिज कर देना है। आपके सामने अगर खुला हुआ होगा प्रश्न पत्र तभी आप मेरी बात को सही तरीके से समझ पाएंगे, अब वो आपकी मर्जी है। तो आप पाएंगे कि जो विकल्प बी है उसमें दो और चार मेंशन किया हुआ है, और जो विकल्प डी है उसमें एक तीन और चार मेंशन किया हुआ है, राइट। यानी कि जो विकल्प बी है और जो विकल्प डी है ये दोनों नहीं हो सकते। अब आप देखें कि आपने केवल एक करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि चार स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसमें से कम हम एक स्टेटमेंट को तो पकड़ ही सकते हैं और पकड़ लेना ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर हम यही मान करके चलेंगे कि हमारी तैयारी का जो स्तर है वो बहुत पुअर है, बहुत कमजोर है, हमें बहुत तैयारी करने की जरूरत है। और सच पूछिए तो ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा जोर केवल किताबें पढ़ने 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 तक है ना, वो अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं करते हैं, यह दिक्कत होती है। अब आप यहां देखिए कि बकायदे अब आपने अगर बी और डी को निकाल दिया तो आपको ए और सी मिल जाते हैं बस। अब इसमें से जो मैंने कहा कि आपको 15 नहीं बल्कि इसमें 18 सही करने हैं, मतलब बिल्कुल 50-50% में नहीं छोड़ना है। तो इसमें सुविधा यह दिया हुआ है कि सी विकल्प में केवल तीन दिया हुआ है कि बस यही सही है। तो तीन में दिया है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। चलिए ये हमको नहीं मालूम है कि होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब है कि इन चारों स्टेटमेंट में केवल ये तीन स्टेटमेंट सही है, केवल तीसरा सही है, तीन स्टेटमेंट सही है नहीं सॉरी केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब इसमें से अगर आप कोई भी एक स्टेटमेंट सही पकड़ लेते हैं तो आप इसे भी खारिज कर देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं अगर अपने कॉमन सेंस से बताऊं तो बातचीत करने के दौरान कभी कभी होता है ना, जैसे आप वीमेन एम्पावरमेंट पर कभी कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके तहत मेरे दिमाग में एक बात कौंधी कि उसमें कहीं मैंने पढ़ा था कि जो हाथी जो होते हैं, हाथियों का जो समूह होता है उसमें जो लीडर होती है वो हथनी होती है, ये मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं सुना होगा। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट वन है वो सही है, लेकिन जो सी है उसमें सही स्टेटमेंट को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां से एक नदारत है, वहां केवल तीन है। इसका मतलब है कि अब जो स्टेटमेंट है ए, स्टेटमेंट ए नहीं कहना चाहिए, जो विकल्प ए वो सही होगा, यानी कि एक और दो सही हो सकते हैं। दो के बारे में मुझे नहीं मालूम था इसलिए मैंने ये गारंटी नहीं कह रहा हूं कि होगा ही, एक और दो सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि थोड़ी सी कोशिश करने पर हम यहां दो विकल्पों तक पहले पहुंचे और इसके बाद एक सही विकल्प तक हम पहुंच गए। दोस्तों मैं आपको केवल तरीके बता रहा हूं और इन तरीकों को आप ध्यान से सुनिएगा, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा यदि आप ठीक समझें और आपको उपयुक्त लगता है तो इस तरह के जो मैं वीडियो अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डेली ऑडियो लेक्चर के, आप इन्हें अपने पास रखें ताकि समय समय पर लेक्चर के रूप में आप इन्हें सुन करके इनका उपयोग कर सकें, राइट। दोस्तों तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है गीत शर्मा, लुधियाना पंजाब से, आप सबका बहुत बहुत आभार। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।